मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 जुलाई 2017 के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको मुझे एक सूचना देनी है जिसकी लंबे समय से आप सब में से कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और सूचना यह है कि अब afis की एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दी गई है। इस ऐप को आप या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पेज पर सबसे नीचे भी यह प्रोवाइड किया गया है। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, और वह यह कि कल हम लोग फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड और फिल्मों के बारे में बातें कर रहे थे, तो कल का उसका पूर्वार्ध था, वह पूरा नहीं हो पाया था, तो आज उसके उत्तरार्ध में उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा मुख्य विषय है। अब आइए थोड़ी सी बातें करते हैं न्यूज के ऊपर। आज के न्यूज में दोस्तों कोई खास बात नहीं थी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के खबरें थी सिविल सर्विस के लिहाज से, और अगर कल आपने डीडी न्यूज सुनी हो, देखी हो, तो आपने देखा है कि किस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में डिस्कशन किया। डिस्कशन क्या, एक एक्सपर्ट बुलाए गए थे, दो एक्सपर्ट, और उन एक्सपर्ट से कुछ बातें जानी गई थी। तो मित्रों, मैं अब उन बातों पर तो नहीं जाऊंगा कि एक्सपर्ट से क्या बातें की गई, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, किताबों में काफी चीजें उपलब्ध भी हैं, और बात इनफैक्ट पॉलिटी पर की गई थी कि वेंकट नायडू जी को उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के बारे में के लिए क्यों चुना गया है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मुझे नहीं लगता है, और आप लोगों में से जिन्होंने सुना होगा डीडी न्यूज पर, तो डेफिनेटली उनकी थोड़ी सी राजनीतिक समझ ज्यादा अच्छी हुई होगी, यह तो पक्की बात है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। फिलहाल न्यूज केवल इतनी है कि हमारे एम वेंकैया नायडू जी, जो अभी सूचना प्रसारण मंत्री हैं और शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनको उम्मीदवार घोषित किया है अभी की सरकार ने, और बट नेचुरल है कि जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के निर्वाचित करते हैं। हालांकि राज्यसभा में तो सरकार का बहुमत नहीं है, यदि सिर्फ राज्यसभा निर्वाचित करती जैसे कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तब तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता था, लेकिन दोनों सदन मिलकर के करेंगे, और अभी की सरकार को दूसरी पार्टियों का भी चूंकि समर्थन हासिल है, तो ये माना जा रहा है कि नायडू जी हमारे अगले उपराष्ट्रपति होंगे, और इनका मुकाबला अभी गोपाल कृष्ण गांधी जी से है, जो गांधी जी के पोते हैं और जो आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। और संयोग देखिए कि जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, और ये वेंकट रमन जी जब उपराष्ट्रपति थे तब उनके सचिव थे, फिर वेंकट रमन जी जब राष्ट्रपति बने तब भी उनके सचिव रहे हैं, इसके बाद फिर इनको साउथ अफ्रीका का एम्बेसडर बना, हाई कमिश्नर बना करके भेजा गया था। कुछ समय पहले तक वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे थे, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, चूंकि मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेखक होने के साथ साथ बहुत ही भले और बहुत ही अच्छे, बहुत ही साफ सुथरे, गजब के इंसान भी हैं। वेंकैया नायडू जी के कद के बारे में आप जानते हैं कि सच में बहुत ऊंचा कद नायडू जी का भी है। तो जहां तक रिजल्ट की बात है, ऑलमोस्ट डिक्लेयर जैसा ही है, लेकिन जब तक विधिवत तरीके से डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा। यहां मैं एक बात विशेष रूप से आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, आपको मालूम है कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही नामांकित होते हैं, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, आज जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कल के न्यूज के आधार पर, वह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो जो संकर जाति की जो फसलें हैं, जो बीज हैं, उनके बारे में निर्णय ले, जिसे हम GM फसलें कहते हैं, है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि जो बीज हैं उन बीजों के उन्नत रूप आप कह लीजिए, जिनके जीन्स के चरित्र में परिवर्तन करके जेनेटिक मॉडिफाइड, उनको मॉडिफाई करके और नई किस्म तैयार की जाती है। ये भारत में बहुत लंबे समय से जबरदस्त विवाद का विषय रहा है कि जीएम फसलें एक्सेप्ट की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल दो अलग अलग वर्ग हैं। एक वर्ग इसे सीधे सीधे एक्सेप्ट करता है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा, हमारी जरूरतें पूरी होंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ये ज्यादा पौष्टिक है, ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करती है, इस तरह की बातें करती है। जबकि दूसरा जो वर्ग है वो बिल्कुल इसके विरुद्ध है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कीड़े मकोड़े बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, जमीन ऊसर हो जाती है, इस तरह की बातें वो कहती हैं। और जीएम में जो फसलें हैं इनके पीछे बहुत बड़ी लॉबी काम करती है कारपोरेट्स की, इसलिए उनका दबाव है कि भारत सरकार इसे स्वीकार करे। तो दो बहुत अलग अलग एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं हैं, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इसको लेकर के इससे पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है, सरकार अब निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका जवाब देगी। फिर आगे अब देखिए कि यह मुद्दा कितना गर्माता है, और यदि इस पर बहस छिड़ी तो डेफिनेटली यह आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग अपने मुख्य विषय पर आते हैं, और वह है फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड और फिल्में। कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं, आइए अब हम कुछ उससे आगे के तथ्यों के बारे में बात करते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप एकेडमिक वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट? आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर है, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी को समझिए कि एक सिविल सर्वेंट की आइडेंटिटी आपकी है और आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपने आंसर देने हैं। यानी कि जब आप फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में जब कोई उत्तर लिखेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सही है गलत है, फिल्मों पर प्रतिबंध हो न हो, इस तरह के प्रश्नों के जब आप उत्तर लिखेंगे तो याद रखिए, नंबर वन कि आप अपनी विचारधारा को भूल जाइए कि आपकी अपनी विचारधारा क्या है। क्योंकि यदि आप अपनी विचारधारा को लेकर के चलेंगे तो पक्की बात है कि आप वन साइडेड हो जाएंगे, एक तरफ आप अपनी ही बात कहेंगे फिर दूसरा साइड छूट जाएगा। सिविल सर्विस के उत्तर देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दोनों साइड को लेकर चले बैलेंस तरीके से, और फिर आप अपना मत दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी विचारधारा को सामने न रखें, लेकिन दूसरे पक्ष को भी सुनने के बाद, ठीक वैसे जैसे कि एक जज है वो दोनों पक्षों को सुनता है, भले उसको मालूम है कि क्या फैसला देना है लेकिन दोनों को सुनता है। तो आपको दोनों पक्षों को लेकर चलना है, यानी कि जब इस तरह के कोई भी मुद्दे उठते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टियों को भूल जाइए कि क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसके पीछे है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है, आप किस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में हैं। आप तो केवल ये देखिए कि राष्ट्र के लिए क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा जो आपके और हमारे पास जो आईना होता है, जो सिविल सर्वेंट होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में कौन सी बात सही फिट हो रही है कौन सी नहीं, दैट्स ऑल, ये बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आइए मैं आपको थोड़ी सी एक हिस्ट्री बताता हूं कि ये फिल्म सर्टिफिकेशन, ये जो फिल्म सेंसर है, इसका मामला कहां से शुरू हुआ। सन 1915 में, मतलब आज से लगभग 100 साल पहले, अमेरिका में एक फिल्म आई थी फ्रेंड्स, द बर्थ ऑफ ए नेशन, आप इसे नोट कर सकते हैं, द बर्थ ऑफ ए नेशन, ये डी डब्ल्यू ग्रिफिथ की फिल्म थी, और डी डब्ल्यू ग्रिफिथ बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत विख्यात और बहुत ही सम्मानित फिल्मकार माने जाते हैं। ये उनकी फिल्म आई थी जो अमेरिका के गृह युद्ध पर आधारित थी। हुआ यह कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अमेरिका में जबरदस्त रूप से नस्लवादी दंगे शुरू हो गए, कई इलाकों में नस्लवादी दंगे शुरू हो गए, मतलब जाति पर आधारित दंगे शुरू हो गए। जब ऐसा सब जब मामला हुआ और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या डिसीजन दिया था, ये रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा था कि नहीं, ये जो फिल्में हैं, जो मोशन पिक्चर हैं, यानी कि ये जो चलने फिरने वाली पिक्चरें हैं, पिक्चर हम कहेंगे, ये जो फिल्में हैं ये कला नहीं है, ये फिल्में मूलतः व्यावसायिक उत्पाद है, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो कमर्शियल प्रोडक्ट पर हम जो कला के सिद्धांत है वो लागू नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने फिल्म को कला मानने से इनकार कर दिया और फिर सीधे सीधे ये कह दिया कि नहीं, इन पर कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला नहीं बनता है, यानी कि सेंसर बोर्ड ठीक है। इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि फिल्म कैसी बनी है और ये प्रदर्शित हो या न हो। लेकिन ये 1915 की बात थी, 1952 में ये बिल्कुल उलट गया। 1952 में फिर से एक बहुत ही महान फिल्मकार हुए हैं, रॉबर्टो रोसेलिनी, उनकी फिल्म आई, रॉबर्टो रोसेलिनी, उनकी फिल्म आई थी मिरेकल। वो जब फिल्म आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल उलट दिया और कहा कि नहीं, ये तो कलात्मक प्रोडक्ट है और इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर आपने रंगरसिया फिल्म देखी हो मित्रों, तो रंगरसिया फिल्म में हमारे जो राजा रवि वर्मा रहे हैं, उन्होंने उस समय जो चित्र बनाए थे, हमारे देवी देवताओं के जो चित्र बनाए थे, उनको लेकर के उन पर एक अश्लीलता का आरोप लगा था और कोर्ट में लंबे समय तक मामला चला था और वो अंग्रेजों का जमाना था और बहुत लंबी बहस हुई है कला और यथार्थ और प्रोडक्ट और व्यावसायिकता को लेकर कोर्ट में। वो एक तरह से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है। वहां अंततः जाकर के कोर्ट ने फिर फैसला दिया था कि नहीं, इसमें अश्लीलता कुछ भी नहीं है और हमारे घरों में जो कैलेंडर होते हैं देवी देवताओं के, जिसमें देवी सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु, शंकर, इन सब की जो तस्वीरें जो ज्यादा पॉपुलर है कैलेंडर में, वो राजा रवि वर्मा के ही बनाए हुए। तो एक ऐसा युग था जब उन्हें अश्लील कहा गया और आज हमारे लिए वही कैलेंडर पूजा के पात्र है, श्रद्धा के पात्र है, हम उनकी पूजा करते हैं, पूजा घरों में लगाते हैं। तो सामाजिक वैल्यू देखिए कि किस तरीके से बदलते रहते हैं, राइट। अब आपको मैं कुछ तथ्य दे रहा हूं जिन पर आपको विचार करना है, सोचना है। पहली बात तो यह है, फिल्म की एक श्याम बेनेगल कमेटी अभी ही बनी थी, लगभग साल दो साल पहले की ही बात है। तो श्याम बेनेगल साहब जो बहुत बड़े फिल्मकार हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया कि देखिए ये जो फिल्म है ये सेंसर करने का काम नहीं, इसका नाम ही है फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, यानी कि इसका काम है कि वो फिल्म को सर्टिफिकेट दे। सर्टिफिकेट दे का मतलब है कि ये फिल्म किन किन के देखने लायक है, बस दैट्स ऑल। उसका काम फिल्मों के दृश्यों को काटना, उसके संवादों के बारे में सोचना नहीं है। अगर उसको लगता है कि ये फिल्म अश्लील है, उसको ए सर्टिफिकेट दे दे। ए सर्टिफिकेट का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट ऑडियंस, केवल एडल्ट ऑडियंस तक सीमित रहे, इसको दूसरा कोई नहीं दे सकता। अदरवाइज वो यू सर्टिफिकेट दे दे। यू सर्टिफिकेट का मतलब फिर वही जाता कि वो पब्लिक के लिए है, उसको सभी देख सकते हैं, यूनिवर्सल है, सभी के लिए सभी देख सकते हैं। इसके बाद एक यू ए होता है, यू ए का मतलब है कि उसे पब्लिक देख सकती है, सभी पब्लिक देख सकती है, लेकिन 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के गाइडेंस से उसे देखें या ना देखें, मतलब उनके पेरेंट्स उसके लिए गाइड करें। इसके बाद एक एस सर्टिफिकेट भी, जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, उसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, जैसे डॉक्टर्स के लिए बनी है या साइंटिस्ट के लिए बनी है। तो ये चार हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है यू ए और यू ए की। अब जो हम लोग बार बार ये सुनते हैं फ्रेंड्स कि ये जो ये कट हो रहा है और इसकी मांग की जा रही है, उसके पीछे सच्चाई ये होती है कि वो एक बोर्ड होता है बकायदे, उसके जो हेड हैं अभी अध्यक्ष हैं पहलाज निहलानी जी हैं और दूसरे मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स जो होते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के और दूसरे दूसरे फील्ड के लोग होते हैं, वो फिल्म को देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो होता यह है कि ये देखने के बाद ये सजेस्ट करते हैं कि देखिए भाई ये इसमें आपत्तिजनक है, और अगर आप इसको ए में चाहते हैं कैटेगरी तब तो ठीक है, तो आप ये हटा दीजिए। अगर आप यूए में चाह रहे हैं तो आप उसमें से ये हटाइए। तो वो सजेस्ट करते हैं, और ज्यादातर जो फिल्म मेकर हैं वो यूए सर्टिफिकेट चाहते हैं, क्योंकि यूए सर्टिफिकेट के कारण उनकी फिल्म का प्रचार बहुत हो जाता है और उनको ऑडियंस बहुत मिल जाती है। तो झगड़ा वहां आता है कि जो बोर्ड है वो कह रहा है कि आप इन इनको निकाल दीजिए तो हम यूए सर्टिफिकेट दे देंगे। वो कहते हैं कि नहीं, हम निकालेंगे नहीं, लेकिन हमको सर्टिफिकेट यूए चाहिए, ये पहली सच्चाई है। तो वहां फिर वो मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। दूसरी बात एक ये भी है दोस्तों कि समाज, अब देखिए कि जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है वो मौलिक अधिकार है हमारा, अभिव्यक्ति जो प्रेस के लिए की गई, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ प्रतिबंध भी है, यानी कि आप हमारी मेरी अभिव्यक्ति ऐसी न हो जो किसी के मानहानि का कारण बन जाए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, या पता लगा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर दे मैं अगर कुछ अभिव्यक्त करूं तो। तो फिल्म सेंसर बोर्ड ये भी देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके रिलीज होने से कुछ लोगों की भावनाओं को आहत मिल जाए, कुछ आहत लग पहुंच जाए, ठेस पहुंच जाए, कुछ गड़बड़ियां हो जाए देश में, तो इनको भी देखता है। अब सवाल यह है कि उस पर जो अध्यक्ष हैं, जो बोर्ड के मेंबर हैं, डेफिनेटली उनका अपना नजरिया तो काम करता ही है। तीसरी एक और बात है मित्रों, वो समाज को भी हमें देखना चाहिए कि बोर्ड अगर किसी चीज पर आपत्ति कर रहा है तो वो समाज को देख करके आपत्ति कर रहा है ना। सुधीर मिश्र जी ने ये बात बहुत अच्छी कही थी, जो बहुत अच्छी फिल्मकार है, बोले कि जो हमारे जो फिल्मों पर जो है वो सेंसर बोर्ड का उतना दबाव नहीं है जितना कि समाज का दबाव है, समाज का दबाव, और समाज का दबाव फिल्म सेंसर बोर्ड पर है। तो कहीं ना कहीं समाज की भी ये कमी है कि समाज इतना उदार नहीं है कि वो इन अभिव्यक्तियों को, कलाओं को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर सके। तो वहां भी एक प्रॉब्लम आती है कि क्या सच में हमारा समाज इतना लिबरल है। नो डाउट कि फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जो बोर्ड के सदस्य हैं और जो अध्यक्ष हैं उनका अपना प्रभाव होता है, हर व्यक्ति की अपनी समझ होती है और उसके आधार पर फिर वो निर्णय भी लेता है। एक तथ्य ये भी है फ्रेंड्स, कहा कि दुनिया के जितने भी फिल्म सेंसर बोर्ड हैं उनमें ज्यादातर मामलों में जो अध्यक्ष होते हैं वो सिनेमा से जुड़े हुए लोग नहीं होते, क्योंकि जब सिनेमा से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो उसके अपने इंटरेस्ट और वो शामिल हो जाते हैं। तो कौन लोग होते हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप के अगर बोर्ड को देखें तो उनमें समाजशास्त्री होंगे, सोशियोलॉजिस्ट होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे, बाल मनोवैज्ञानिक होंगे, फिल्म समीक्षक होंगे, इस तरह के लोग होते हैं। तो ये लोग ज्यादा तटस्थता के साथ इस बात का मूल्यांकन कर पाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फिल्म है इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिल्मकार के अंदर वो समझ नहीं, फिल्मकार के अंदर तो सिर्फ फिल्म बनाने की समझ है। तो ये भी कहा जाता है कि नहीं, फिल्म सेंसर बोर्ड की जो मेंबर्स हैं अब उनमें थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए। एक मित्रों और पॉइंट है कि अगर फिल्म सेंसर बोर्ड, चलिए हम ना फिल्म सेंसर बोर्ड ही कह लेते हैं, अगर कोई आपत्ति कर रहा है तो आप उसके लिए रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं और ऊपर कमेटी होती है, आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। अगर वहां से भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो यहां तक कि आप कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं फिल्मकारों के पास भी हैं। लेकिन मित्रों एक बात और भी है और वो ये है कि ये एक्ट बना था 1952 में और आज हम कहां पहुंच चुके हैं, आप सोच करके देखिए, आज हम 60-65 साल आगे निकल चुके हैं। तो अब नए तरीके से सोचा जाना चाहिए, क्योंकि माध्यम बहुत से आ गए, हमारे पास आज इंटरनेट है, माध्यम अलग अलग तरह के अभिव्यक्तियों के हो गए हैं, उनका ओपननेस अलग है। तो आप फिल्मों को कितना दबा करके रखेंगे, नई पीढ़ी की मान्यताएं बदल गई हैं, सामाजिक मूल्य बदल गए हैं, तो उन सब को देखते हुए डेफिनेटली चीजों में बदलाव किए जाने की जरूरत तो है। तो मित्रों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इस नजरिए से इस मुद्दे पर सोचें, और ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो लगातार बना रहता है, इस पर बातें होती रहती हैं। तो कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे तो एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक अच्छे तर्कपूर्ण तथ्य इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स की बात है, मैं कुछ प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा, संख्या काफी कम है। अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर जो नौजवान साथियों के स्वागत का चरण है। तो मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 6 साथियों के नाम हैं सुधीर कुमार हजारीबाग झारखंड से, संजीव कुमार भंडारी अशोकनगर मध्य प्रदेश से, इंदुबाला श्रीगंगानगर राजस्थान से, रवि कुमार पटना बिहार से, संतोष कुमार दिल्ली से, और गुलाफसा अंजुम कुरैशी बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो आप सभी 6 साथियों का मित्रों मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।